Hi, I'm Paula Zahn, announcing the launch of On the Case, the podcast. Experience the most dramatic true crime investigations in a whole new way. Hear from loved ones on a relentless quest for justice and interviews with the detectives who piece together the mystery. On the Case with Paula Zahn, the podcast. Download it wherever you listen to podcasts.
संगीत एवं क्रिसमस कैरोल, जहां मिठाई मुंह में मिठास भरती है तो वहीं संगीत कानों में मिश्री घुलता है। क्रिसमस के पर्व का एक बहुत ही बड़ा आकर्षण संगीत है, जिन्हें क्रिसमस कैरोल कहते हैं। इसे गाने की प्रथा सर्वप्रथम यूरोपीय देशों में शुरू हुई थी। ये पगानों द्वारा गाए जाने वाले गीत थे, जो प्रायः शिशिर अयनांत के समय मनाए जाने वाले उत्सवों में पत्थर के चारों ओर नाचते हुए गाया जाता था। असल में कैरोल का अर्थ है खुशी से गुणगान करना, जिन्हें पगान खुशी से नाचते हुए गाते थे। इसे शुरू में साल के चारों मौसमों में लिखा और गाया जाता था, परंतु अब क्रिसमस के समय ही गाने का रिवाज रह गया है। प्राचीन पगानों के उत्सवों को ईसाइयों ने क्रिसमस में परिवर्तित कर दिया और उनके गानों को क्रिसमस के गानों के रूप में गाने लगे। 129 ईस्वी में रोम के बिशप ने क्रिसमस कार्यों में केवल एंजल्स हिम्न को ही गाने का आदेश दिया। 760 ईस्वी में पुराने मशहूर क्रिसमस के गीतों को जेरूसलम के गीतकार कोमस ने लिखा। उसके बाद कई यूरोपीय गीतकार क्रिसमस कैरोल की रचना करने लगे। मध्यकाल आते आते लोगों में क्रिसमस मनाने की रुचि समाप्त हो गई। सन 1223 में सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी ने लोगों में फिर से क्रिसमस मनाने के प्रति रुचि जगाई। वे इटली में जीसस के जन्म के वृत्तांत को नाटक के रूप में प्रदर्शित करते थे और लोग इस कहानी को गीत के रूप में गाते थे। इन गानों के कोरस लैटिन में होते थे, पर साथ ही नाटक में अभिनय को देखकर वे कहानी को समझ जाते थे। ये सारे ऐसी भाषाओं में बने जो सबको समझ में आए, और इस तरह से ये फ्रांस, स्पेन, जर्मनी एवं दूसरे यूरोपीय देशों में प्रसिद्ध हो गए। आज के जमाने में गाए जाने वाले कैरोल को 1410 में लिखा गया था। इन कैरोल में मैरी एवं जोसेफ के बेथलहम के लोगों से मिलने की घटना का वर्णन किया गया है। विलियम सैंडिस एवं डेविस गिलबर्ट ने इंग्लैंड के गांवों से बहुत सारे पुराने क्रिसमस के गीतों को इकट्ठा किया। लोगों के बीच ये गीत मशहूर होने से पहले इन्हें कुछ आधिकारिक गायक ही गाते थे। इन गायकों को स्थानीय नेता अपने साथ गाँवों में ले जाकर गवाते थे। ये गायक केवल क्रिसमस की पूर्व शाम को ही इन गीतों को गाते थे। क्रिसमस की पूर्व शाम को वॉच नाइट या वेट नाइट भी कहते हैं, क्योंकि इसी शाम जब चरवाहे अपने मवेशियों की देखभाल कर रहे थे, तब देवदूतों ने आकर जीसस के जन्म की खबर उन्हें दी थी। क्रिसमस की पूर्व संध्या में क्रिसियस के गीतों को गाने की वजह से इन गायकों को वेट्स कहा जाता था। इन्हीं दिनों इंग्लैंड में अनेक वाद्य वृंद एवं कॉयर तैयार हुए और लोग उनसे क्रिसमस के गाने सुनना पसंद करने लगे। विक्टोरियन काल में और भी नए कैरोल्स की रचना की गई। नए कैरोल्स की प्रथा चल पड़ी। लोग इन्हें सड़कों पर गाने लगे, जो आज भी प्रचलित है। कैरोल्स की सेवा का सबसे मशहूर तरीका मोमबत्ती की रोशनी में कैरोल प्रस्तुत करना है। गिरजाघरों में सिर्फ मोमबत्तियों को जलाकर कैरोल गाए जाते हैं। ऐसा करने से लोगों को माहौल एकदम क्रिसमसी लगता है। दुनिया के अनेक देशों में ये पद्धति अपनाई जाती है। कैरोल की सेवा का सबसे अच्छा तरीका है 9 पाठों का एक त्योहार एवं कैरोल, जिसमें कैरोल एवं बाइबल के पाठ के द्वारा क्रिसमस की कहानी सुनाई जाती है। इन कैरोल्स की धुन पारंपरिक अंग्रेजी लोकगीतों जैसी होती है। इन मधुर गीतों को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध होकर आनंद सागर में डूब जाते हैं।